Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Pasyan kukshigatan characharaganan. मैं इसका पान कर लेता हूं, खा लेता हूं, ये सबको पचा लूंगा। तो जब विचार करने लगे तो उनको तुरंत आया कि अरे सारा ब्रह्मांड तो मेरे अंदर बैठा है, चराचर सारा विश्व ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान शिव के अंदर बैठे हैं। तो ब्रह्मांड बैठा है तो प्राणी बैठे हैं कि नहीं उनके अंदर? प्राणी बैठे हैं, है? हाँ, जैसे आप लोगों ने भागवत सुनी है ना, क्या था वो अगासुर, है ना? अगासुर की कथा आती है ना, कंस के द्वारा प्रेरित होकर अगासुर जंगल में बैठा हुआ था और इस उद्देश्य को लेकर बैठा हुआ था कि ये ग्वाल वाले सब आएंगे, गाय चराते हुए आएंगे और मुख को ऐसा खोलकर बैठ जाओ कि बहुत बड़ा गुफा की तरह बन जाए और उन बालकों को ये लगे कि ये बढ़िया गुफा है, इसके अंदर घुसकर खेलो, भ्रम पैदा हो जाए। और जब वो खेलते खेलते मुख के अंदर घुस जाए तो उसको तुमको सब खा के मार डालना। तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगासुर वहां गोचर भूमि में आकर मुंह खोलकर जुब्बा लंबा करके बैठा हुआ था। अब हुआ ही यही, हुआ भी यही। और ग्वाल वाले जब गाय चराने के लिए चले गए, गाय चरने लगे तो उन लोगों को लगा कुछ खेलना चाहिए, तो क्या खेले? बोले यहां गुफा है, कितना बढ़िया, देख लो क्या बढ़िया गुफा है, इसी गुफा के अंदर जाके बैठते हैं, खेलते हैं। तो सब चले गए, भगवान ने कहा कि तुम सब चले जाना। तो गए, क्योंकि जब तक भगवान नहीं आए तब तक उस बंद करेगा नहीं, वो खुला रखेगा। पहले भगवान जाते तो बंद कर देता वो मुख, इसलिए भगवान ने कि लास्ट अंत में जाने की कोशिश की। सब चले गए तब तक वो मुख खुला ही रखा जब तक भगवान नहीं आए, और जब भगवान अंदर घुसे तो उसने मुंह बंद कर ली है? तो सब लोग घबराने लगे। तो अरे चिंता न करो, तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूं। तो मानो जैसे उस अगासुर के मुंह के अंदर सारे ग्वाल वाले बैठे हैं, इसी तरह भगवान शिव के अंदर आप और हम सब बैठे हैं। कहां है? उसी परमात्मा के अंदर बैठे हैं हम, है? तो भगवान शिव जाके उसके बोले इसके अंदर क्या कितना गहराई है जरा देखते हैं। बोले नहीं भाई, हमको तो डर लगता है, अंदर नहीं जाएंगे, पता नहीं कहां तक ये सुरंग है, कहां तक कितना गहरा है ये गुफा, हमको तो डर लगता है भाई, हम तो नहीं जाएंगे। बोले तुम लोग सब इधर ही बैठो, मैं जाता हूं। तो उस अगासुर के और अंदर चले गले में और जमा जाके शरीर को ऐसा बढ़ाया, अष्ट सिद्धि तो उनके चरणों में है, अणिमा लगिमा गरिमा प्राप्य प्राकाम्य सित्व वसित्व, पहले तो वह लगिमा थे अब गरिमा हो गए। वहां जाकर गरिमा सिद्धि का स्मरण किया तो ऐसा शरीर फुलाया कि उसके गले में वो अटक गए, फंस गए। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गले में कुछ फंसता है तो जो फंसता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसका गले में फंसता है उसको परेशानी होती है। तो किसको परेशानी हुई? तो अगासुर को। श्वास जो है नाक का और मुख का जो संधि है, नली है, वहां जाकर वो ऐसे अड़ गए कि बस वो तो मर ही गया, ऐसे ही मर गया, लड़ने ही नहीं पड़ा। थोड़ी देर के बाद भगवान से जब उसको लगा कि मर गया है, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और जोर से एक तालु मारा तो उसका मुंह खुल गया, चलो अब निकलो, सब लड़के सुरक्षित। हाथ में हम विष लिया भगवान शिव ने और विचार करने लग गए इसको क्या करूं। बोले खा जाऊं, नहीं, अंदर यदि उतार लूं तो अंदर चराचर प्राणी है उनका नाश हो जाएगा, तो अंदर तो उतारना ठीक नहीं है। बोले बहिस्थितान, बाहर फेंक दूं, छोड़ दूं तो बाहर जल रहा है, बाहर के प्राणी मर जाएंगे। और प्राणियों का रक्षा करना इस समय मेरा दायित्व है, तो वही उसका स्मरण कर रहे हैं शंकराचार्य जी। ये भगवान की परोपकार की बुद्धि कितनी अच्छी है, देख लो। नालंबा परमोपकार कमिदम त्वेकम पशु नाम पते पश्यन कुक्षिगतम। अपने पेट के अंदर, अपने अंदर विद्यमान चराचर प्राणियों को उन्होंने तुरंत स्मरण किया, अरे मेरे अंदर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मांडों के प्राणी सब मेरे अंदर हैं, मैंने इस जहर को नीचे उतारा तो उन लोगों का संहार हो जाएगा, उनकी रक्षा भी करना जरूरी है। बोले बाहर फेंक देता हूं तो बाहर ये सब भयभीत हो रहे, सदेवासुर नरे, सारे प्राणी भयभीत हो रहे, बाहर फेंकना भी ठीक नहीं है। सर्वामर्त्य पलायनौ सदमति ज्वालाकरम भीकरम। अति ज्वालाकर कालकूट जल रहा है, बल रहा है, लपट ज्वाला, विष्क ज्वाला, हाँ उसको देखकर सर्वा अमर्त्य, अमर्त्य माने देवता भी, पलायनम अमृत खाए हुए व्यक्ति भी पलायन भागने लगे। पलायन उस पलायन को रोकने की औषधि भगवान शिव ही हैं भाई। पलायन सौ औषधम अति ज्वाला करम भी करम निक्षिप्तम गरलम। भगवान शिव ने ऐसे गरल को, विष को निक्षिप्तम रखा, कहां गले, गले निक्षिप्तम कंठ में रख दिया, नीचे भी उतरा नहीं और बाहर भी फेंका नहीं, क्योंकि नीचे भी प्राणी है, अंदर भी प्राणी है, बाहर भी प्राणी है। प्राणियों का रक्षा करना उनका कर्तव्य है, परोपकार करना उनका स्वभाव है। भुवन भय भंग व्यसनीना है उनका, वो आदत है, इसलिए उन्होंने कंठ में धारण, गले न गलितम नीचे भी नहीं उतारा, नोदीर्णम वोमिट करके बाहर भी नहीं फेंका। ये आपका ये परोपकार है प्राणियों की रक्षा करना, तो यही एक ही कर्म से आप इसी एक विष को कंठ में धारण करके अंदर के प्राणी और बाहर के प्राणियों के सब की रक्षा करना, एक ही कर्म आपको देवताओं से भी श्रेष्ठ महादेव बनाने के लिए पर्याप्त है। और आप महादेव हुए ही इसी कारण से, और सब देव का देव ही रह गए, आप महादेव हो गए, एक ही एक परोपकार कर्म आपने किया, उसी का उसी समुद्र मंथन और कालकूट से संबंधित ये बड़ा विनोदात्मक श्लोक शंकराचार्य जी ने लिख दिया। संसार के प्राणी अज्ञानी लोग भ्रम में पड़ते हैं, ये तो ठीक है, आप भी भ्रम में पड़ जाते हो महाराज, संसारों को, संसारियों को भ्रांति होती है, ये तो ठीक है, लेकिन आपको भी भ्रांति हुई है। शिव ने कहा मुझे क्या भ्रांति हुई है भाई, ज्वालो ग्रस सकला मराति भयदः, सकल अमर अति भयदः, ज्वालो ग्रह उग्र ज्वाला के द्वारा, किसका बोले विष का, छेला छेल माने विष, समझे नहीं, छेल माने विष, क्योंकि समुद्र के अंदर जो तरंगे निकलती हैं और एक तरंग दूसरी तरंग से, दूसरी तरंग तीसरे तरंग से जो टकरा टकरा कर उसमें जो झाग उत्पन्न होता है, उस झाग का नाम है छ्वेल। संस्कृत भाषा में उस पानी के झाग को छ्वेल कहते हैं, और वह जहर भी समुद्र मंथन के टकराव से, पानी में टकराव से जो झाग निकला था, तो सबसे पहले वही तो कालकूट था, इसलिए उसको छ्वेल कहा। वो कैसा था, वो ज्वालो उग्र सकला अमरा अति भयदा, एकदम ज्वाला के रूप में कालकूट जल रहा था और उसको देखकर देवता और असुर भी सब अति भय था। सामान्य भय तो हम लोगों को होता है, सभी को होता है, अति भय माने मृत्यु का भय। अब इससे बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, मरना निश्चित है, ऐसा निश्चय हो और उस निश्चय के द्वारा जो डर हो मन में उसको अति भय कहते हैं। ज्वालोग्रह सकला मरा अति भय चोला कथम त्वया, उसको आपने ऐसे कालकूट को जिसको देखकर सारे देवता भयभीत हुए थे उसको त्वया दृष्ट, तो आपने भी देखा लेकिन आपको कोई डर ही नहीं हुआ। किम छकरे धृत कर तले किम पक्व जम्बू फलम, आपको उस समय भ्रांति हुई कि ये जामुन का फल है समझ के उठा लिया आपने, समझे कि नहीं। आप लोग खाते हो कि नहीं जामुन का फल? आजकल तो बाजार में खूब मिलता है जामुन, और शुगर वाले तो और भी ज्यादा खाते हैं। हमारे पास लाते हैं भक्त हो महाराज, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आप खाइए। तब उस समय यह श्लोक याद आता है, भगवान को शिव को वो कालकूट जो काला काला था ना, उन्होंने कहा कि अरे ये फल तो कोई नहीं खा रहा है, क्या इतना बढ़िया फल। तो फट से उसने शिव जी ने करे धृता हाथ में उठा लिया है? उनको भी भ्रांति हो गई है भाई, जहर में फल बुद्धि, ये क्या है, भ्रम है। विष में फल बुद्धि भ्रांति है कि नहीं? हम लोगों को विष में अमृत बुद्धि होती है, है? हमको क्या होती है, विषय, विषय हम लोग ग्रहण करते हैं कि नहीं, और विषय में विष है कि नहीं बोलो। मैं हमेशा समझाया करता हूं और यही कारण है शंकराचार्य जी साधकों को शिष्यों को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे बेटा, हे शिष्य हो, हे साधकों हो, सावधान रहना, संसार में यदि विष पीना पड़े तो खुशी से विष पी लेना, समझे कि नहीं। विषपान करना पड़े तो खुशी से विषपान कर लेना, लेकिन कोई हजार आदर सम्मान पूर्वक भी विषय सेवन के लिए कहे तो सावधान रखना। बोले क्यों महाराज, विष और विषय में क्या अंतर है? शंकराचार्य जी कहते हैं विषस्य विषयाणाम च दृश्यते महद अंतरम, विष और विषय में बहुत अंतर है। बोले क्या अंतर है महाराज? बोले उपभुंक्त्वा विषम हंति, विष तो मुख में रखने के बाद ही उस मुख में रखने वाले को मारने में समर्थ है। विष को देखे आंख से देखे तो देखने मात्र से देखने वाला मरता है, है? विष को देखने मात्र से देखने वाला मरता है, देखने वाले को मार सकता है विष? विष को स्मरण करे, याद कर ले तो याद करने वाला, याद करने मात्र से मरता है कोई? विष को जेब में रखे, घर में अलमारी में रख ले, इतनी मात्र से कोई मरता है क्या? यदि घर में रखने मात्र से ये विष है, जानने मात्र से, विष को देखने मात्र से मरता तो विष का कोई व्यापार ना करता, जहर का कोई व्यापार ना करता है, कोई केमिस्ट दुकान में न रखता है। विष बेचने वाले होते हैं कि नहीं दुकान में? चूहे मारने वाला विष, चूहे का विष कहते हैं कि नहीं, मच्छर का विष, कॉकरोच का विष बेचते हैं कि नहीं है? कोई मरता है? पेपर में आता है फलाना ने चूहे मारने का विष सेवन करके मर गया, तो विष सेवन करने पर ही मरता है, रखने पर कोई नहीं मरेगा, देखने पर नहीं मरेगा, सुनने पर कोई न मरेगा, छूने पर भी कोई नहीं मरेगा। विष में कोई ताकत नहीं है इतना अनर्थ करने की, लेकिन विषय में बड़ा ताकत है। विषय का तो स्मरण करते ही असर कर जाता है, स्मरण किया कि असर, सुन लिया कि असर करता है, याद किया तो असर करता है, छू लिया तो असर करता है, देख लिया तो असर करता है। इसलिए विषय और ज्यादा खतरनाक है, विष से भी विषय ज्यादा खतरनाक है, और हम उसको बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। शंकराचार्य कहते हैं बहुत खतरनाक है, शायद भगवान शिव ही इस बात को जानते हैं। विष और विषय में बड़ा अंतर है, विषय खतरनाक है, विष से भी, विष को तो पचाया जा सकता है, विषय को पचाना मुश्किल है, क्योंकि विषय विष इस जन्म को असर करता है और विषय अनेक जन्म को असर करता है। हाँ, विषय तो जन्म जन्म में संक्रमित है, वो विष संक्रमित नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं विष तो उपभुंक्त्वा ये वहंती, कोई मुख में डालेगा उसको सेवन करेगा तभी उसको मार सकता है, जो सेवन नहीं करता है उसको नहीं मार सकता है, लेकिन विषय ऐसे हैं कि उसको सुन लो तो असर करता है, छू लो तो असर करता है, देख लो तो असर करता है, स्मरण कर लो याद कर लो तो असर करता है। बोलो, रावण ने सीता के बारे में केवल सुना था, समझे कि नहीं, शूर्पणखा से सीता के सौंदर्य के बारे में शूर्पणखा से रावण ने केवल सुना सीता के सौंदर्य को, असर कर गया, और असर ऐसा कर गया कि मरना पड़ा कि नहीं, नाभि में अमृत है, वो भी सेवन नहीं कर रहा है, लेकिन रावण को मरना पड़ा किसके चलते, विषय के चलते। सीता के सौंदर्य को सुनकर सीता के प्रति उसकी आसक्ति न बड़ी होती तो राम क्यों मारते उसको, अनाहक राम को क्यों मारना जरूरत है। रावण मरा किसके द्वारा, तो बोले विषय में आसक्ति के चलते वो मर गया। देखा नहीं है सीता को, खाली सुना है, असर कर गया कि नहीं, हाँ। और विष सुनते असर करता है, आप लोग भी तो सुन रहे हो विष का, असर किया हाँ? नहीं करता। भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में इस श्लोक लिखा है, विषस्य विषयाणांच दृश्यते महदंतरम उपभुंक्त्वा विषमहंती विषया चक्षुषाप्ययम्। आंख से देखा कि असर कर गए, क्योंकि विष में वो और विषय में वो ताकत कहां से आ गया, बोले एक अक्षर ज्यादा है ना, वो विषय लिखते हो ना, कैसे लिखते हो, पहले विष लिखने के बाद फिर अंत में यह जोड़ देते हो तो क्या हुआ, तो विष तो लिखने पड़ा कि नहीं तुमको, बोलो तो विषय क्या है, ये इस माला का नाम क्या है, है? ना ना, वेदांत में इसको विषय बोलते हैं, हाँ। ये सफेद है तो ये आंख का विषय हो गया कि नहीं, ये सफेद है, पीला है, हरा है, ये किसका विषय है, आंख का विषय है, और इसमें जो सुगंध है वो किसका विषय है, नाक का विषय है, इसलिए ये पूरा माला क्या है, विषय है, ये देख लो, तो ये विषय मतलब यह हटा दो, क्या है ये विष प्लस यह क्या हुआ, तो विष तो ये है ही है, ऑलरेडी विष है ये, क्योंकि ये विष न होता, मान के चक्कर में ये माला पहनने के लिए गर्दन कोई नहीं झुकाता, और वही मान सम्मान के चक्कर में व्यक्ति मरता है, तो यह असर कर गया कि नहीं, बोलो अनर्थ का कारण बन गया कि नहीं। संसार का सब विषय, पदार्थ का नाम वेदांत में विषय, जुवा का विषय रस, आंख का विषय रूप, नाक का विषय गंध, कान का विषय शब्द, और त्वचा का विषय स्पर्श। विषय पांच माध्यम से असर करता है और विष तो केवल एक माध्यम से, जिह्वा में पहुंचने पर ही विषय असर करता है, अन्यथा देखने पर भी असर नहीं करेगा, सूंघने पर भी असर नहीं करेगा, छूने पर भी असर नहीं करेगा, लेकिन विषय तो असर कर जाता है, तुरंत असर करता है। दूसरी बात, विष केवल स्थूल शरीर को ही प्रभावित करता है और स्थूल शरीर को ही बर्बाद कर सकता है, नष्ट कर सकता है, समझे नहीं? विषय सूक्ष्म शरीर को भी असर करता है। विषय की आसक्ति स्थूल शरीर में होती है कि सूक्ष्म शरीर में? आसक्ति कौन से शरीर में होती है बोलो? हैं? तुम लोग वेदांति हो ना, तुम लोगों को तो पता है आसक्ति कौन से शरीर में होती है? हैं? देखो आजकल खूब मैंगो का सीजन चल रहा है ना, मैंगो खाओगे, आम और आम रस खाओगे, आप खाओगे, और उसका असर स्थूल शरीर को होता है, सूक्ष्म शरीर को नहीं होगा, ख्याल रख लो, समझे कि नहीं? खूब आम खाओगे शुगर बढ़ेगा, वो शुगर कौन से शरीर में बढ़ेगा भाई? स्थूल शरीर में कि सूक्ष्म शरीर में? स्थूल शरीर में। वजन बढ़ेगा, स्थूल शरीर का ही बढ़ेगा, समझे नहीं? लेकिन उस आम के प्रति तुम्हारी यदि आसक्ति बढ़ गई, वो आसक्ति कौन से शरीर को असर करेगा? आम खाओगे स्थूल शरीर को असर करेगा, और आसक्ति यदि बन गई तो सूक्ष्म शरीर को असर करता है। आसक्ति मन में यानी सूक्ष्म शरीर में रहता है, और सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। और क्योंकि आम खाकर यदि मरोगे तो स्थूल शरीर को ही असर किया, लेकिन आम की आस खाए तो नहीं लेकिन आसक्ति हो गई, तो परिणाम क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर को असर करता है, तो जन्मांतर को बिगाड़ता है। राजा भरत को, भरत का जन्म बिगड़ गया, किससे? आसक्ति से, विषय के आसक्ति से। दया और करुणा ये ठीक है, लेकिन दया करुणा के साथ वो दया करुणा आसक्ति में परिणत हो गया। भोग अपनी जगह है स्थूल शरीर के लिए, वो इतना खतरनाक नहीं भोग, लेकिन आसक्ति, भोग में होने वाली जो आसक्ति है वह स्थूल शरीर को भी बर्बाद करता है, असर करता है, और स्थूल सूक्ष्म शरीर को असर करता है, और सूक्ष्म शरीर जन्मांतर में वही है, वही शरीर है, क्योंकि उसमें आसक्ति बैठा है, इसलिए फिर दूसरा जन्म होगा, फिर वो आसक्ति यथावत होगी, फिर वो आसक्ति तीसरे जन्म, चौथे जन्म, जन्म जन्मांतर। इसीलिए जब तीसरा जन्म हुआ जड़ भरत का, तो उन्होंने आसक्ति को हटा दी, आसक्ति को हटा दी, तो उनका फिर जन्म बिगड़ा नहीं, सुधर गए। तो जन्म बिगाड़ने वाला कौन है? विषयों की आसक्ति। इसलिए विषय सूक्ष्म शरीर को भी असर करने वाली होने के कारण विष से भी खतरनाक है, समझे कि नहीं? तब कहा कि विषयों की आसक्ति नहीं करना शिष्य, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत घातक है। विष सेवन करना पड़े, भले ही पी लेना, शिव जी ने पी लिया है तो तुम भी पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन विषयों की आसक्ति तुम नहीं करना, क्योंकि शिव ने भी नहीं की विषय की आसक्ति। शिव जी ने कोई विषय में आसक्ति किया हुआ कोई प्रमाण है? बोलो, विषय में कोई आसक्ति नहीं, मान धतुरा जैसा मिल गया खाया गुजारा वो कर ली बस हो गया, गुफा में बैठ गया रह गए, रात गुजारा करना है तो गुफा के अंदर कंदरा के अंदर बैठ गए, हो गया गुजारा हो गया, और शरीर ढाकना है, शीत निवारण करना है, लज्जा निवारण करनी है, दंती त्वक बागंबर जैसा मिल गया उसी से गुजारा कर ली। विषय में आसक्ति होती तो विष्णु को जो अलंकार चाहिए था तो शिव को अलंकार नहीं चाहिए था, माला पहनने की इच्छा हुई तो बस दंती त्वकृत सुंदराम वरदरे और निरकरोटी सग अपि निरकरोटी लो, माला क्या बना ली? मनुष्यों की खोपड़ी, श्रग माने माला, निरकरोटी माने मनुष्यों की खोपड़ी, उसी को एक खोपड़ी दूसरे, क्या बढ़िया सफेद मोती का माला हो गया। ले जी, तुम मोती खोजने कहां जाओगे? हो गया मोती का माला, सफेद माला, है? कपड़ा पहनने की इच्छा हो गई, लपेट लिया बाघम्बर है?